प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज का जो संदेश है उसका टाइटल है 10 कुंवारियों की कहानी। 10 कुंवारियों की कहानी, ये जो कहानी है ये बाइबल में से हमने मत्ती 25:1-13 से ली गई है। मत्ती 25:1-13 हम पढ़ेंगे उसे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे की आने में देर हुई तो वे सब ऊँगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियों उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशालें भुजी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए तेल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी ग्वालियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुम से सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमें समझ दीजिएगा ये कहानी के बारे में, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे दिल और हमारे दिमाग को खोलना प्रभु, ताकि हम आप जो कहना चाहते हैं वो हम ठीक से समझ पाएं और अपने ज़िंदगी को आपके रास्ते पर हम लेकर चलें। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यह जो कहानी है ये इज़राइल की रीति रिवाज के बारे में यहाँ लिखा है। इज़राइल में अगर शादी ब्याह होती थी तो ये अक्सर शाम के वक्त ये शादी ब्याह का प्रोग्राम होता था, जो शाम को शुरू होकर रात देर रात तक चला रहता था। तो ये इज़राइल में जब शादी होती थी तो जो दूल्हा है अपने लोगों के साथ जो मशाले हैं मशाले लेकर ये जो दूल्हा है वो अपने लोगों के साथ जो दुल्हन है उसके घर में आता है, चलकर आता है, अपने साथ मशाले लेकर चलकर ये लोग आते हैं दुल्हन के घर में और वहाँ से दुल्हन को लेकर फिर से जो दूल्हा है वो अपने घर दुल्हन को लेकर आता है, ये भी चल के मशालों के साथ। तो ये जो शादी का फंक्शन है जाहिर सी बात है कि अगर शाम के वक्त अगर शुरू होता है तो रात होती है, और रात के वक्त मशालों की ज़रूरत होती है रोशनी के लिए। तो ये कहानी है 10 कुंवारियों की। हम मसीह हैं, हमें पता है कि यीशु मसीह दोबारा वापस आ रहा है। वापस आकर हम सब जो विश्वासी है उनको लेने के लिए वापस आ रहा है। बाइबल में जो कलीसिया है वो दुल्हन कहलाती है। जो कलीसिया है वो बाइबल में एक दुल्हन है, दुल्हन के रूप में हम उसे पढ़ते हैं, यीशु मसीह की दुल्हन। और जो यीशु मसीह है वो है हमारा दूल्हा। सो हम दुल्हन होने के नाते हम हमारे जो दूल्हा है यीशु मसीह उसका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ जो कहानी है वो 10 कुंवारियों के, 5 जो उनमें से हैं वो मूर्ख हैं और 5 जो हैं वो समझदार हैं। अभी जो समझदार हैं, समझदार जो कुंवारी हैं, वे अपने साथ मशाले तो हैं, इन मशालों के साथ साथ अपनी कुप्पियों में तेल भरकर वे रखे हुए हैं। और जो मूर्ख कुंवारी हैं, 5 मूर्ख कुंवारी हैं, उनके पास मशाले तो हैं लेकिन उनके पास तेल नहीं है। जो सवाल हमारे जहन में आना चाहिए वो ये है कि ये जो मूर्ख कुंवारी, जो 5 मूर्ख कुंवारी जो हैं, उन्होंने ज़्यादा तेल क्यों नहीं अपने साथ लिया? ये जो 5 मूर्ख कुंवारी जो थे वे मूर्ख तो थे लेकिन कोई एक और वजह है जिसे उन्होंने जो तेल जो है वो अपने साथ नहीं लिया। 5वें वर्स में हम पढ़ेंगे, परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँगने लगी और सो गई। हम ये कह सकते हैं कि जो 5 जो मूर्ख कुंवारी जो थे वे हो सकता है कि आलसी हो या दूल्हे के आने की तैयारी में नहीं हो, या हम ये कह सकते हैं कि वे दूसरों चीज़ों से काफ़ी व्यस्त थे। उनकी ज़िंदगी में दूसरे ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो करने थे उनमें वे काफ़ी बिजी हो गए। अब जो हम विश्वासी हैं उनके लिए ये जो तेल हमें क्या बतलाता है? बाइबल में तेल का क्या अर्थ है? बाइबल में जो तेल है वो पवित्र आत्मा के बारे में बतलाता है। यहाँ 10 के 10 कुंवारी लड़कियां थी, इसका यह मतलब है कि 10 के 10 मसीह विश्वासी लड़कियां जो प्रभु के लिए दुल्हन थे, जैसे हम प्रभु के
प्रभु के लिए हम दुल्हन हैं। लेकिन उनमें से पांच जो लड़कियां थी उनमें पवित्र आत्मा नहीं थी। तो सवाल यह है कि ये जो पांच लड़कियां थी उनमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं थी? ये पांच लड़कियों में पवित्र आत्मा क्यों नहीं वास किया? हम पढ़ेंगे इफिसियंस 5 उसका 18। इफिसियों की किताब उसका 5 उसका 18। में ये लिखा है इफिसियंस 5 उसका 18 इसमें ये लिखा है और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुच्चपन होता है पर आत्मा से पति परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुच्चपन होता है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर हम अपने आप को हम दाखरस या शराब से हम भर लेते हैं तो पवित्र आत्मा किस तरह से हमें भर देगा? पवित्र आत्मा और शराब दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अगर हम अपने आप को हम शराब से भरते हैं तो पवित्र आत्मा के लिए कोई जगह बाकी रहते ही नहीं। यहां जो 10 जो लड़कियां थी वे सभी विश्वासी हैं और आप लोग ये कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं और हम शराब नहीं पीते हैं, हम अपने आप को शराब से नहीं भरते हैं। लेकिन सच्चाई और भी है कि अगर हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं तो फिर हम किन चीज़ों से भरे हुए हैं? हो सकता है कि हम शराब से न भरे हुए हो, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं तो कुछ और ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हम भरे हैं। हम काफ़ी ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं जो प्रभु की जो चीज़ें हैं उनको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम अपनी ज़िंदगी के लिए हम काफ़ी बिज़ी रहते हैं। हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हमारी जो एम्बिशंस हैं, हमारे जो हमें जो करना है पाना है, आगे हमें एक एक अच्छा एक फ्यूचर देखना है, इन चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी को भरते हैं। इसको समझने के लिए यीशु मसीह इन सब चीज़ों से समझने के लिए यीशु मसीह ने एक कहानी लिखा है मार्क चैप्टर 4 में, मार्कुस 4। यीशु मसीह कहता है उन लोगों के बारे में जो अपनी ज़िंदगी में कोई फल नहीं लेकर आते हैं। मार्कुस 4 उसका 7, मार्कुस 4 उसका 7, यीशु ने उनसे कहा यह भी लिखा है माफ कीजिएगा, मरकुस 4 उसका 7, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों के बढ़कर झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। ये जो कहानी है एक एक किसान की जो बीज बो रहा है, कुछ बीजे जो ऐसे हैं जो झाड़ियों में गिर जाते हैं और झाड़ियों की वजह से दबे होने की वजह से फल नहीं लेकर आते हैं। अभी जो कहानी है यीशु मसीह इसका अर्थ समझा रहा है 18 और 19 का आयत में, इसी को वो समझा रहा है 18 और 19। और जो झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। यहाँ तीन चीजों के बारे में यीशु मसीह कहता है, संसार की चिंताएं, और धन का धोखा और वस्तुओं का लाभ, वस्तुओं का लोभ। ये जो चीजें हैं वे क्या करते हैं, इंसान को व्यस्त बनाते हैं, प्रभु से दूर ले जाते हैं, प्रभु के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हम। तो क्या होता है, हम उन 5 मूर्ख लड़कियों के समान हो जाते हैं जो हमारा जो दूल्हा है उसका हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, हम तैयार नहीं हो पाते कि यीशु मसीह आए और हमें ले चले। हम जो है संसार की जिद्दियाँ जो चिंता है उनमें भरे होते हैं, कल क्या होगा, कल की चिंता, बच्चों की चिंता, उनका जो कल है उनकी चिंता, धन का धोखा, पैसा चाहिए और पैसा कमाना है और हमें प्रॉपर्टी जमाना है, ये भूलते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें इसका कोई फायदा हमें नहीं मिल पाता या मिल सकता है। दूसरी चीज़ों का लोभ, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें प्रभु के लिए हम फल नहीं ले पाते हैं। हम अपने आप को तेल से नहीं भर पाते, मसाले तो हैं लेकिन उनमें तेल नहीं, हम जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन इसमें पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। ये जो 5 लड़कियां हैं जिनके पास तेल नहीं था, उनको पता था कि मशाले जो है अगर उनको जलाना है तो तेल की जरूरत होगी, पता होने के बावजूद भी उन्होंने अपने साथ तेल नहीं रखा। तो मसीह होने के बावजूद भी हमें पता है कि यीशु मसीह आने वाला है, फिर भी हम उसके लिए हम तैयार नहीं होते। हमें पता है यीशु मसीह जल्द आने वाला है, अगर हम पता होने के बावजूद भी हम अपने आप को यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में यीशु मसीह के अलावा और भी चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण बन गए हैं। पैसा, चिंताएं, लोभ। तो हम पढ़ेंगे उसी को, मत्ती 25 को 6 से, मत्ती 25 आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियों उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों फिर आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। ये जो पांच लड़कियां जो थी जिनके पास तेल नहीं था, वो जानते थे कि क्या जरूरत थी, क्या क्या किन चीज़ों की ज़रूरत उनके पास होनी चाहिए, तेल की ज़रूरत उनके पास होनी चाहिए, वे जानती थी, फिर भी उन्होंने तेल अपने पास नहीं रखा। जब वे समझदारों के पास चली गई, जो समझदार लड़कियां थी उनके पास अगर वे चली गई, तो उनका क्या उत्तर था? उन्होंने कहा, अपने लिए आप खुद जाकर बाजार से खरीद ले लो। तो इसका ये अर्थ है कि जब यीशु मसीह आएगा तो जिनके पास पवित्र आत्मा है कि भरपूरी है, वे दूसरों की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से पांच जो लड़कियां थीं उनके पास जो तेल था, वे कहने लगी कि हम जो हमारा तेल है वो आपको नहीं दे सकते। इसका ये अर्थ है कि जब यीशु मसीह आएगा तब जो पवित्र आत्मा से जो भरपूर जो लोग हैं, वे दूसरों को जो उनके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, उनको नहीं मदद कर पाएंगे। हम एक दूसरे की मदद उस दिन नहीं कर पाएंगे। मदद करनी है तो अब करनी है। हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि आप हमें तैयारी करनी है, हमें अपने आप को तैयार रखना है। पवित्र आत्मा की भरपूरी रखनी है। तो पवित्र आत्मा से भरपूर किस तरह से हम होंगे? उसका लिखा है बाइबल में इफिसियों 5:18-20, पवित्र आत्मा से भरपूरी किस तरह से होनी है? क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तब जिनके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी है, उनको वो अपने साथ ले जाएगा। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर होनी है तो हमें आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाने हैं और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, चर्च में कलीसिया में हमें आते रहना है, वचन सुनते रहना है, वचन के अनुसार हमें जिंदगी बिताना है। तो अगर हम इस तरह से हम करेंगे तो पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारी जिंदगी में आती रहेगी। हम दूसरी चीजें जो है उनकी तो हम जरूरत है, जो हमारे दिन भर की जो जरूरतें हैं, इसके साथ साथ हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी भी हमें करनी है। हम अपना जो कार्य है उसे हम ठीक से करें, बाकी जो है वो प्रभु संभाल सकता है। जो प्रभु ने हमें जो चीज़ करने को कहा है उसे हमें करना है, बाकी की जो चिंताएं हैं वो प्रभु पे हमें छोड़ना है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी और जो प्रभु आएगा तो हमें अवश्य अपने साथ लेके जाएगा। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, तौबा करेंगे और यही हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें मदद कीजिए कि हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी हो, ताकि हम अपनी जिंदगी को तैयार रखें कि जब आप आएंगे तो अवश्य हमें ले जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु की हमारी जिंदगी में काफ़ी ऐसे चीज़ें जो हैं उसे हमें अपनी ज़िंदगी को व्यस्त कर दिए हैं, संसार की चिंताएं हैं, धन का धोखा है और दूसरे चीज़ों का लोभ। आपको हमें आपके लिए हमें समय नहीं रखा, प्रार्थना वचन का ध्यान नहीं दिया, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। आगे भी प्रभु हमें मदद कीजिए कि हम सदा हम बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, स्तुति गान गाते रहें, कलीसिया में आते रहें, आपके लोगों के बीच हम संगति करें, ताकि भरपूरी जो हो पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे ज़िंदगी में होते रहें। मदद कीजिए प्रभु। प्रभु आप महान हैं, रहम दिल प्रभु हैं, रहम कीजिए और हमें अपने रास्ते पर लेके जाएं। यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन।